بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام قول من رب رحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، صدق الله العلي العظيم. گزشتہ دو دنوں سے، بلکہ کل ہم نے شروع کیا تھا یہ اگلی آیت کی تفسیر کو، سلام قول میں ربہم، کو ہم تین دن سے آج تیسرا دن پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ تمام کے تمام ناظرین سامعین کو ولادت با سعادت حضرت سبط اکبر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت بہت مبارک ہو. خداوند متعال اس میلاد پہ، اس میلاد مسعود اور عید سعید پہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی عید عنایت فرمائے، اور ہمیں زندگی میں بار بار امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. اس سے پہلے کہ میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں، کچھ تفسیر کو جاری رکھوں گا، پھر انشاءاللہ جشن بھی پیش کروں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلام قول میں رب رحیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں تین طبقات بتائے ہیں، السابقون السابقون اولئک المقربون. ایک تو سابقون ہیں وہ جو صلی اللہ کے مقرب ہیں، پھر اس کے بعد کہا اصحاب الیمین اور اصحاب شمال. تو تین دستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائے ہیں، اور روایات کے روح سے طیب البیان میں درج کیا ہے انہوں نے کہ یہ جو السابقون السابقون اولئک المقربون ہیں، جو سب سے سبقت لے جانے والے، وہ معصومین ہیں، انبیاء ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، تو جن کی کوئی معصیت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی لغزش نہیں، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہ اولئک المقربون. اور اس کے بعد اصحاب یمین ہیں، یہ مؤمنین ہیں جن کے اندر ایمان کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ پائے جاتے ہیں، کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، معصیت ہے. اور تیسرا جو ہے وہ اصحاب شمال ہیں کہ جو بے ایمان لوگ ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ کار خیر بھی کریں تو اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے قبول کرنے والا ہے، اہل ایمان سے عمل کو قبول کرتا ہے، تو ان کے اعمال قبول ہی نہیں. تو اب یہاں ایک روایت کو میں پیش کر دوں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، مصحف ناطق امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک روایت پیش کی ہے. یہ روایت جو ہے اس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے اگلی آیت میں کہا وامتاز الیوم ایہ المجرمون، تو فرق ہو جائے گا، ہم نے کل پیش کیا تھا کہ اللہ کہے گا مجرموں سے کہ تم الگ ہو جاؤ، تو مجرم جو ہیں وہ اصحاب شمال ہیں. تو آپ نے فرمایا ہے اس روایت میں کہ اذا جمع اللہ الخلق یوم القیامت ہے بقو قیاما علی اقدامہم حتی یلجمہم الغرق فینادونا یا ربنا حاسبنا ولو الى النار قال فیبعث اللہ ریاحا فتضرب بینہم فینادی منادی وامتاز اليوم ایہا المجرمون. تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین کی ساری مخلوقات کو اللہ جمع کرے گا روز قیامت، اور پھر کچھ کو جو ہے وہ غرق کر دے گا. وہ کچھ کہیں گے کہ پروردگار ہمارا حساب کتاب کر، چاہے جہنم میں بھیج دے لیکن حساب کتاب کر. تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ہوائیں چلائے گا، اور جو ہوائیں جو ہیں وہ آواز دیں گی وامتاز الیوم ایہا المجرمون کہ اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. فیمیز بینہم فسار المجرمون فی النار ومن کان فی قلبہ ایمان ساروا الی الجنہ. تو جو مجرم ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائیں گے. تو یہاں پہ جو شاہد ہے وہ ہے کہ ایمان والے اصحاب یمین ہیں اور یہ جو مجرم ہیں ان کے پاس وہ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے. تو یہاں مراد جو ہے وہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے, مجرم مراد وہ ہیں. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا سورہ فرقان میں, سورہ فرقان کے آیت نمبر 24 اور 25 میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ, 25 سورہ ہی ہے, اس کی آیت نمبر 24 اور 25, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یوم اذن المجرمین ویقولون حجرا محجورا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بلکہ 22 اور 23 آیت, جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی, اور فرشتے کہیں گے تم لوگ یہاں سے دور دفان ہو جاؤ. حجر محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یہ آیت جو ہے بڑی قابل توجہ ہے, اور ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے انجام دیے ہوں گے, تو ہم اسے اڑتا ہوا پراکندہ غبار بنا دیں گے. ہبا منثورا یعنی اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. تو اب جو اس دن روز قیامت ضروری ہے بات سمجھنا, وہ یہ ہے کہ مجرمین کو اس دن کوئی بشارت نہیں, اور یہاں پہ بھی شاید میں بھی آیا ہے مجرمین ومساز الیوم یہ المجرمین. تو مجرم جو ہے وہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے, ان کی کوئی شے قبول نہیں ہے, ان کی ہر چیز, یہاں پہ ان کے اعمال کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو غبار بنا دیا جائے گا. تو مجرم کون ہے, اعمال کو کیوں اس کے قدمنا الا ما عملوا عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا اللہ کہہ رہا ہے یعنی ان کو غبار بنا دیں گے, پراکندہ کر دیں گے, ان کے اعمال قبول نہیں ہے. وقدمنا الى ما عملوا من عمل یعنی ما عملوا من عمل یعنی اعمال ہوں گے, اللہ قبول نہیں کرے گا مجرموں سے. کون ہے مجرم؟ امام فرما رہے ہیں کہ وہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے, کیونکہ اس دن دو گروہ ہوں گے, مجرموں کا اور اہل ایمان کا. تو اہل ایمان وہ جو ایمان رکھتے ہیں, ان کے اعمال کم بھی ہوں تو کوتاہیوں کے بعد ان کو برزخ میں کاٹ چکے کچھ بھی اللہ انہیں جزا دے گا. مجرم وہ کہ جو ایمان ہی نہیں رکھتے تھے, نہ اللہ کو مانتے تھے نہ اللہ کے رسول کو, تو ان کے لیے کوئی بھی, تو مجرم یہ. اگلی آیت میں اللہ نے جو ہم نے کل پیش کیا تھا کہ علم آحد علیکم, یہ مجھے کیونکہ وضاحت میں نے کل کہا تھا کہ میں تھوڑا وضاحت کروں گا اس کی آج. علم آحد علیکم یا بنی آدم, کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین, کہ شیطان کی پرستش مت کرنا. تو یہاں پہ مراد جو ہے وہ صاحب عطیب البیان نے بھی لکھا, میں نے بھی کلرز کیا تھا کہ یہاں پرستش اور عبادت سے مراد کہ شیطان کی عبادت. ہاں گروہ تھے پہلے بھی, انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے بھی ایسے گروہ تھے ڈیول ورشپرز, کچھ کافر ایسے تھے جو شیطان کی پرستش کرتے تھے, لیکن یہاں شیطان کی پرستش سے مراد جو ہے وہ اطاعت ہے. شیطان کی جو بندگی ہے عبادت, یہاں پہ عبادت نہیں بلکہ اطاعت مراد ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں, 7 سورہ ہے سورہ اعراف, اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کے سامنے, یا بنی آدم, اے بنی آدم, لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون. آیت نمبر 27. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اے آدم کے بیٹو, یہاں پہ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا علم آحد علیکم یا بنی آدم, یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم, یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا حضرت آدم و حوا کو, ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کر دے, اور اس کی جماعت تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتی ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ پاتے. وہ ہمیں دیکھتے ہیں شیطان اور جن, ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ کان من الجن, شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے, قرآن کی آیت ہے. ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو دوبارہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے سرپرست شیطان بن جاتے ہیں, انہیں مجرم بناتے ہیں, وہ شیطان کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں اور اسی میں پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. तो अब अहले ईमान जो हैं वो शैतान की पैरवी नहीं करते और ना करना चाहिए। अब यहां पे क्या है कि हजरत आदम हव्वा जो हैं उनका एक यानी लिबास नहीं पहनते थे, फिर भी अल्लाह ने किस तरह से बनाई थी चीजें कि चीजें छुपी रहती थी हमारे आज़ा वगैरह जनाब आदम हव्वा के। जब वो पौधा खाया तो फिर उसके बाद उनके वो बरहना हो गए, यानी उनके लिए फिर दुनिया में आए तो वो अकेले थे, फिर उन्होंने लिबास बनाया दुनिया में आने के बाद। तो ये लिबास जो है वो उस वक्त हमारे लिए कुछ और था, यानी यहां पे जो कुरान में आया कि बहरहाल, तो अब गुनाह नहीं था लेकिन गंदम नहीं खा सकते थे। मैंने किसी और मकाम में पेश किया था लेकिन ये इस तफसीर में नहीं कहा, कह दूं इशारा कर इशारा था, क्योंकि बनी आदम से मुतालिक बहस चल रही है कि हजरत आदम ने ये जो कहा ना कि अल्लाह सुबहान तआला के मासूमीन ने कहा कि मासियत नहीं है यहां पे, कुरान हमें काफी नहीं है बगैर अहले बैत के। आज बहुत से लोग कहते हैं मैं कुरान से पढ़ के सब कुछ निकाल लूंगा, तो वो गुमराह होते हैं, फिर वो गलत तफासिर करते हैं। इस्मत अंबिया अलैहिस्सलाम का, हजरत आदम की इस्मत का इनकार करने से इंसान दीन से खारिज हो जाता है। हमारे तमाम फुकहा का फतवा भी हजरत सानी अतला मकारी मकार सब कहते हैं जो इस्मत का इनकार कर दे, हजरत अली का खुद अपना फरमान है, जो हजरत दाऊद से मुतालिक ये कहे कि उन्होंने औरिया जो ये यहूदियों ने अपनी तौरात में लिख रखा है, क्योंकि तहरीफ कर दी उन्होंने अपनी तौरात, उसमें कहा कि औरिया जो है उनका जर्नैल था, उसकी बीवी पे उनकी माजल्ला सफर अल्लाह रबी नजर पड़ गई थी, वो खूबसूरत थी, उन्होंने जानबूझ के औरिया को भेज दिया ताकि वो मर जाए शहीद हो जाए ताकि वो उसकी बेवा से शादी कर ले। हजरत अली सलाम ने कहा कि जो इस कस्म का अकीदा रखेगा मैं उस पर दो हदें जारी करूंगा, एक नबी पे तोहमत लगाने की कि वो मासूम थे, और दूसरी हद कुफर के ऊपर कि वो काफिर हो गया, उसने नबूवत का इनकार कर दिया, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम नहीं है। नहीं ऐसे अकायद ना अपनाए ना ऐसे यानी अकायद जो है बनाए कि वासा आदमो रब्बहू, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो कुरान की आयत है कि आदम ने अपने रब की मासियत, ये तर्जमा नहीं किया जाएगा, मासियत यहां पे अल्लाह ने पेश किया तो कि नहीं अल्लाह जो है वो रब है, जब उसने कहते तो मानना पड़ेगा। भाई मासूम अलैहिस्सलाम से पूछे यहां पे क्या, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत आदम से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, ए आदम जब अल्लाह ने आपको मना किया था उस पौधे के करीब मत जाइएगा तो फिर आपने क्यों पौधा खाया, तो आपने फरमाया जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए जिब्राइल मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई अल्लाह की कसम खा के गुनाह करेगा या झूठ बोलेगा। का इबलीस ने कहा कि ए आदम मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं पौधा खा लो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, यानी ये पहली दफा है कि कोई अल्लाह की कसम खा के जनाब आदम के सामने झूठ बोल रहा, इबलीस ने झूठ बोला, तो कहा मैंने जो है वो पौधा खा लिया, इबलीस ने कसम खा के मुझसे कहा। तो बहरहाल ये जो है हमारे मुसलम अकायद के अंदर है कि मासियत नहीं है, बहरहाल वो उनके ऊपर हराम नहीं था लेकिन उसमें उनकी आजमाइश थी और वो उस आजमाइश में इबलीस के अल्लाह की झूठी कसम खाने की वजह से उन्हें वो दुनिया में आना पड़ा, और उसने जो है वो उन्हें उनसे लग्जिश या कह लें कि एक जिसको कहा जाता है अरबी में तर्क औला करवा दिया, गुनाह नहीं मासियत नहीं, यहाँ पे वहां पे वासा, यानी जनाब आदम अपने लिए उसको मासियत ही समझते थे, परवरदिगारा ये मुझसे क्या हुआ, लेकिन तर्क औला हुआ था, गंदम हराम नहीं है, मासियत तो तब होती ना। तो अब यहां पर इसलिए कि हसबुना किताबुल्लाह का नारा ना लगाए कोई भी कि मुझे किताब काफी है, जिसने लगाया था ये नारा वो सबसे पहले अहले बैत के दर पे आया था। तो अब यहां पे बहरहाल इन्नहु लकुम अदुव्व मुबीन, के शैतान जो है वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो अल्लाह ने वजालू लिल्लाह शुरका अल जिन, सूरह नाम के अंदर और भी आया था कि और उन्होंने जिनों को अपना जो है वो खुदा का शरीक बना दिया। तो ऐसे हैं कुछ लोग के जो शैतानों को अल्लाह का शरीक बना देते हैं, लेकिन शैतान खुला हुआ तुम्हारा दुश्मन है, तो और उसने खुल के ऐलान कर दिया मैं दुश्मन हूं, कुरान में मौजूद है, आला फब इज्जत का अल्लाह से उसने कहा तेरी इज्जत की कसम लाग़वैन्नहु मजमाइन, मैं तेरे आदम के सारे नस्ल को सारे इंसानों को ये जो बंदे तेरे आएंगे नस्ल आदम होगी सबको गुमराह करूंगा, उनको अगवा करूंगा यानी उन्हें तेरे रास्ते से हटाऊंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे खास बंदों के उनमें भी जो मुखलिस हैं मुखलस हैं जिनको तूने चुना है उन पर बस नहीं चलेगा, ना ये कि वो नहीं बहकाएगा अम्बिया और आइम अलैहिस्सलाम पे, हजरत आदम को इसने भी जो तर्क औला हुआ उसने झूठ बोला था तो उनको गुमराह नहीं कर सकता। या काला फबे मा अगवे तनी, यहां पे वो कह रहा परवरदिगारा तूने मुझे अगवा किया तूने मुझे गुमराह किया। वो कहते हैं कुफ्र की शैतान की सबसे बड़ी दलील ये है, एक तरफ तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा रहा, जानता है इज्जत अल्लाह ही के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अपनी गुमराही की अल्लाह की तरफ नस्बत दे रहा है, क्या तूने मुझे गुमराह किया। वो जो बता रहा है कि जो है मैं जिसको सजदा करना जरूरी है, सब करोगे, एक नहीं करेगा, बार बार बताया उसने इतनी मुद्दतों तक रखा, गुमराह हो गया आपने कि अब मैं तीनों चीजों को पेश करूंगा अभी, तो काफ अब इज्जत का लगवैन मजमाइन, मैं जरूर इन सबको इनकी नस्ल को गुमराह करूंगा, और अल्लाह से कह रहा फबे काला फबे मा अगवैतनी लाकदन्ना लहोम, मैं सिरात अल मुस्तकीम तेरे सीधे रास्ते के बीच में बैठ जाऊंगा, फम्मा लातयन्नहुम मिन बैन एदीहिम व मिन खल्फहिम व अन एमानहिम व अन शमाइलहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, क्या करूंगा फिर मैं उनको सामने से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरफ से गुमराह करूंगा सिरात मुस्तकीम में बैठ के। तो अल्लाह कह रहा है कि शैतान की इबादत ना करना, उसके उसकी पैरवी ना करना, वो क्या करेगा, वो पैरवी, यहां पे समझ में आ रहा है कि यहां पे मुराद इबादत नहीं बल्कि पैरवी है, वला ताबुदु शैतान यानी शैतान की परस्तिश ना करना, ये पैरवी ना करना, वो क्योंकि क्या करेगा, वो पैरव बनाने कोशिश करेगा, सिरात मुस्तकीम में दाएं बाएं आगे पीछे से हर तरफ से गुमराह करने कोशिश करेगा। आओ वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अल्लाह कह रहा है ये शैतान के कौल को पेश कर रहा है कि शैतान कहता है अल्लाह से कि उनमें से अक्सर तेरे शुक्रगुजार नहीं होंगे। परवरदिगारा हमें शैतान का पैरोकार ना बनाना, परवरदिगारा बचा कि हम उसकी पैरवी के अंदर ना चले जाएं, और वो क्या करेगा कि वो ज्यादातर बंदों का पैरोकार बना लेगा अपना कुछ मुसलमान पैदा होंगे उसके पीछे चल पड़ेंगे, शिया घरानों में पैदा होंगे, अकीदा तौहीद छोड़ देंगे, अकीदा आदल छोड़ देंगे, अकीदा नबुव्वत इमामत और विलायत का इनकार कर देंगे, माद का कयामत का इनकार कर देंगे, तो शैतान के पीछे चले जाएंगे बहुत से लोग, और जो शैतान के पीछे चला गया बस फिर उसके लिए बख्शिश नहीं है। तो अल्लाह सुभान व तआला जो है बार बार हमें कह रहा है कि नहीं शैतान से बचो। तो गफलत जो है वो इंसान करने पे उतर आता है, और कितने ही इंसान जो है वो अपने आप को डराए तो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को बचा के रखे। तो बहुत से ऐसे वाकयात हैं और बहुत सी आयात हैं, रिवायात हैं, बेइंतहा रिवायात हैं, जो भी जो है इंसान गुनाह करेगा वो उसके सामने मुजस्म होकर चीजें रोज़े क़यामत आ जाएंगे। मैंने पहले पेश किया था कि फैज़ काशानी ने ऐनुल यकीन में रिवायत की है, जो शराब खोर होगा रोज़े क़यामत जो है वो शराब का प्याला हाथ में पकड़ा हुआ होगा, जो जैसा गुनाह करता होगा वो उसी गुनाह के साथ जो है रोज़े क़यामत मशहूर होगा। तो इन तमाम गुनाहों से बचेंगे तभी तो अपने आप को आप बचा पाएंगे। तो अब यहां जो तंबीह है वो ये है कि शैतान जो है वो क्या कहता है, तीन चीजें हमारे लिए गुनाह का सबब बनती हैं, तीन दुश्मन है इंसान के, तीन दुश्मन। पहली है दुनिया, दूसरे इंसान का अपना नफ्स, और तीसरा जो है शैतान। दुनिया वो इंसान के लिए जलवागर होके आती है सामने, उसमें कशिश पैदा करके आती, दुनिया कशिश पैदा करती है। नफ्स जो है वो उसके में तमायल पैदा हो जाता है, उस कशिश की तरफ मैलान आता है, उसकी तरफ वो मायल हो जाता है, और शैतान रहनुमाई करता कहता बस अब ये इसके अंदर, तो दुनिया जलवागर है, उसके अंदर बेइंतहा कशिश है, उसी कशिश से जो है बचने के लिए अल्लाह सुभान व तआला ने इंतजाम किया। वा नअबुदू ने क्या इंतजाम किया, बस मेरी इबादत करना, हाजा सिरातुल मुस्तकीम, बस यही सीधा रास्ता है, जो सबसे सीधा रास्ता हो उसी की तरफ चलते रहेंगे और इंसान जो है फिर उस आजमाइश से बचेगा। तो अब ये कि बहुत से तीन तरह की जो है वो अदालत या चार अदालतें इंसान के लिए पेश की हैं उलमा इल्म अखलाक ने, एक है अदालत अकायद में, दूसरी अदालत अखलाक में, तीसरी अफआल में, और चौथी हुकूक में। अकायद में अदालत यह है कि इंसान न इफराद का शिकार हो न तफरीद का, न कुफ्र नफाक व शिर्क की तरफ चला जाए और न तफरीद, यानी न तौहीद के मामले में इफरात और तफरीद करे, ना अदल और नबुव्वत के मुताबिक, ना इमामत, ना ही माद किसी भी चीज में इफरात और तफरीद नहीं करे, जो बिल्कुल सही अकायद हो उन्हें अपनाए। इंसान अपने आप को मुसलमान कहते हुए इन तमाम अकायद में इफरात और तफरीद का शिकार हो सकता है मुसलम अकायद के अंदर, हत्ता यानी मिसाल के तौर तौहीद में कोई अल्लाह की बहुत सी सिफात का इनकार कर, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ दूसरी तरफ से अपने जैसा समझ के बैठ जाए, तो इसी तरह से नबुवत के मामले में, इसी तरह से इमामत और विलायत के मामले में बहुत से लोग जो हैं वो इफरात और तफरीत का शिकार जाते हैं, कुछ गाली बन जाते हैं, कुछ उन्हें अपने जैसा समझने लगते हैं, कि वो कुछ नहीं, बस इमाम है, यानी कोई पेशवा के तौर पे हैं, ना उनका कोई इल्म खास है, ना उनके पास कोई मकाम और विलायत है, ना कोई यानी उनकी विलायत भी बस। तो ये तमाम अकायद के अंदर इंसान अपने अकीदे को सही रखे, ये है अदालत दर अकायद, अकायद में इंसान आदिल हो। दूसरा, आदिल हो अपने अखलाक में। अखलाक में बहुत सी चीजें हैं, जैसे इंसान जो है वो अखलाक हमीदा को अपनाए, अखलाक हसना को अपनाए। सखावत हद वसत है, इफरात और तफरीत उसमें क्या है? इफरात जो है वो है इसराफ और तबजीर। इसराफ यानी, और तबजीर में फर्क क्या है? इन्नल मुबज्जरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक के मुबज्जरीन शैतान के भाई हैं। तबजीर और इसराफ, इसराफ कुलू व शरबू वला तुसरफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। इसराफ यानी सही जगह खर्च करना लेकिन जितना जरूरत है उससे ज्यादा, ये इसराफ। तबजीर असलन गलत जगह खर्च करना, ये तबजीर है। दोनों हराम है, दोनों गुनाह। और बुखल जो है उसका वो ये इफरात, दूसरा तफरीत जो है वो है बुखल, कि इंसान जो है बकील हो जाए उसमें। लेकिन सखावत जो है वो हद वसत है, उसमें अदालत। इसी तरह से तवाज़ो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, मुतवाज़े हो इंसान, मुनकसर मिजाज हो। किब्रो नखवत जो है एक तरफ, और दूसरी जिल्लत और खिफत, ये दोनों बड़ा इंसान के लिए। एक है किब्र, तकब्बुर, नखवत दूसरों को हकीर समझना, एक तकब्बुर से पेश आना सब कुछ गलत गुनाह आने कबीरा में। दूसरी तरफ जिल्लत और खिफत का शिकार, इंसान अपने आप को जलील व खार करके लोगों के सामने पेश करे, ये भी नहीं, लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने, अल्लाह वालों के सामने अपने आप को तवाज़ुन के साथ पेश, अल्लाह के सामने जलील हो इंसान। तकब्बुर के सामने जितना झुकोगे मुतकब्बिर उतना ही ज्यादा तकब्बुर करेगा। तकब्बुर माल मुतकब्बिर इबादत, मुतकब्बिर के साथ तकब्बुर करना भी इबादत है। इसी तरह से अफआल के अंदर इंसान की जो है वो अफआल में भी, अपने कामों में भी अदालत जरूरी है, यानी वाजिबात को तर्क ना करे, मुहर्रमात को अंजाम ना दे, ये अदालत है। और इंसान जो है आदिल वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा, यानी गुनाह ने कबीरा सगीरा ना करे, यानी अगर कबीरा ना करे तर्क करे, और अगर सगायर करता है तो उससे तौबा करे। और बहरहाल तो ये इंसान जो है रहबानियत की तरफ ना चला जाए, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, इस्लाम में रहबानियत का तसव्वुर नहीं है। तो शरीयत इस्लाम का पाबंद हो कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत का तसव्वुर नहीं, और उसकी वजह से कोताही करने से इंसान फिर उसको फजूर में चला जाता है। तो अदालत और हुकूक, लोगों के हुकूक में जो है अदालत क्या है, कि लोगों के और उसके अपने हुकूक दोनों के पामाल ना हो, ना ये कि भी दूसरों के हुकूक अदा करने में अपने हुकूक पामाल कर दे, ना अपने हुकूक पामाल करे ना दूसरों के हुकूक पामाल करे। तो इंसान जो है वो हद वसत, यानी अदालत, कुंतुम यानी उम्मत वसता कुरान करीम में कहा कि हम वसत हैं, यानी हम मॉडरेट जो है वो सीधे रास्ते पे, यानी मॉडरेशन का रास्ता है। टाइम है थोड़ा सा, बहुत तेजी से टाइम गुजर गया, मैं क्योंकि जश्न भी पढ़ना चाह रहा था, शायद सवालात फिर ना लूं मैं। तो ये तमाम के तमाम जो है चीज़ों के अंदर इंसान को एक सिरात मुस्तकीम ये है कि इंसान मॉडरेशन के रास्ते को, सीधे रास्ते को, और हद वसत को अपनाए, मुतवसित रास्ते को अपनाए। कुछ लोग जो हैं वो आलिम होते हैं लेकिन बेअमल, तो उनका कोई इल्म फायदा नहीं देता। कुछ बेअमल होते हैं लेकिन आलिम नहीं होते, उनके भी अमल को कोई फायदा नहीं क्योंकि इल्म नहीं रखते। तो इल्म और अमल दोनों साथ साथ होने चाहिए। और कुछ ऐसे जो हैं इन्होंने मुतअद्दिद अक़साम लिखी हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत बयान की है कि चार तरह के लोग हैं। जाहिल मुतहत्तिक, जाहिल यानी सब जानते हैं जाहिल का मतलब क्या है, यानी मुतहत्तिक यानी हतक करने वाला, हर चीज की बेहुरमती करने वाला। आलिम मुतहत्तिक, आलिम मुतहत्तिक ऐसे भी होते हैं कि जो आलिम है लेकिन हर चीज की तौहीन, कुछ नहीं समझता किसी चीज को, इल्म रखता है खुद, जाहिल नहीं है लेकिन हतक की हुरमत का जो है वो पास नहीं रखता है, ना अल्लाह की हुरमत का, ना नबी की, ना इमाम की। लोग बहुत से ऐसे लोग हैं आलिम के जो उम्मत की इसलाह करते करते इमाम की इसलाह करने लगते हैं, लोगों से पेश ऐसे आएंगे कि जो है वो उनकी हद की हुरमत का, मोमिन का एहतराम है। तो मुतहत्तिक नहीं चाहिए। फिर जाहिल मुतनस्सिक है, सही लेकिन है जाहिल। तो कहा ये तीनों जहन्नम में, फिर कहा एक जन्नत में, आखिरी जम का आलिम मुतमस्सिक। मुतमस्सिक यानी कि जो बिल्कुल सही चले लेकिन इल्म भी रखता हो। अमल करे लेकिन इल्म के साथ, जाहिल अमल भी करे जहालत के साथ तो उसका फायदा नहीं। तो आखिरी आपको पेश करके फिर मैं इंशाअल्लाह ताला अगले भी चलूंगा कि वलकद अज़ल्ल मिनकुम, वलकद ये जो सूरह यासीन की आयत है, वलकद अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू ताकिलून, 62वीं आयत है ये ज़ाहिरन। तो अल्लाह सुब्हान व तआला यहां पर फरमा रहा है इस 62वीं आयत के अंदर सूरह यासीन की इरशाद बारी ताला हो रहा है कि और उसने यानी ये शैतान की तरफ है तुमसे बहुत सी नस्लों को गुमराह कर दिया था, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यानी शैतान पहली उम्मतों को भी गुमराह कर चुका है, जैसे अब हमें हमारे इस दौर में लोगों को गुमराह करता है। वलकद अजल्ला, अजल्ला यानी दलाल से गुमराही से, वलदालीन तो वो फाइल है, ये है अजल्ला फेल है माजी। वलकद अजल्ला मिनकुम तुम में से यानी इंसानों में से जिबिल्लन कसीरा, जिबिल्लन जो है वो इंसानों की नस्ल को कहा जाता है, और इन्होंने लिखा है कि जिबिल्लत वत्तकुल्लज़ी खलकुकुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन, जिबिल्लतल अव्वलीन यानी जो है पुरानी नस्लें, खल्क बेमाना है खल्क है मखलूक जिबिल्ला, तो जिबिल्लन कसीरा तुमसे पहले भी बहुत से इंसानों को मखलूकात को गुमराह कर चुका है शैतान। तो पहले जो गुज़श्ता लोग हैं उनमें से बहुत से जो ग्रोहों को उसने गुमराह किया, किसी को मुशरिक बना दिया, किसी को यहूदियों को मुशरिक बना दिया, नसरानियों को मुशरिक बना दिया, फिर मुसलमानों में से बहुत से लोग, खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जैसे यहूदी 71 फिरकों में तकसीम हुए, ईसाई 72 में, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, 77 उम्मती इला 73 फिरका, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, खुल हम फिनार अल्ला वाहिदा, सबके सब जहन्नम जाएंगे सिवाय एक के, वही फिरकत नाजिया, वही जो है वो फिरका नाजिया होगा। तो उन 72 में कौन सी चीज़ मुश्तरक है, सब में एक चीज़, इसका मतलब वो जो 73वां फिरका बख्शा जाएगा वो है कि जिनमें वो चीज़ें हैं जो बाकी 72 में नहीं, जो 72 में सब चीज़ें मुश्तरक होंगी, यानी अल्लाह को मानते होंगे, रसूल को मानते होंगे, कुरान को मानते होंगे, सहाबा को मानते होंगे, सब चीज़ें मुश्तरक होंगी। कौन सी चीज़ ऐसी होगी कि जिसके ये यानी ये कायल हैं, ये 73वां, तो वो है 12 के कायल, अहले बैत की इमामत और विलायत के कायल, वो जो है वो फिरका नाजिया है। तो बहरहाल यानी फिरका नाजिया जो रसूल खुदा ने नहीं कहा कि कौन सा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनमें से एक ऐसा होगा। तो हम ये कहते हैं कि जो 72 में है, जो उनमें 72 में है, 73 इसका मतलब है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो उनमें नहीं है। तो इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, शैतान को कभी भी अल्लाह तसल्लुत नहीं देता। ये जो है ना, ये क्या कि शैतान की परस्तिश ना, उसी ने इताअत ना करो, तो यहाँ पे अल्लाह सुल्तान नहीं देता उसे, यानी तसल्लुत नहीं देता उसे, कभी भी तुम पे कुदरत नहीं देता, वो मुसल्लत नहीं हो सकता। किन पे? अल्लाह लदीन आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं और अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, परवरदिगार तू मुझे बचा, जब अल्लाह पे कह दे कि तू बचा तो फिर अल्लाह बचाता है, तो उस पर तवक्कुल करने वाले, ईमान लाना शर्त है, ईमान जो ले आता है तो शैतान पहले मोहतात हो जाता है, लेकिन ईमान वाले तब गुमराह होते जब अल्लाह पे तवक्कुल छोड़ दें, तो तवक्कुल करते रहे। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान वकफा बिरब्बिका वकीला, बेशक मेरे बंदों पर तुझे कोई भी तसल्लुत नहीं होगा। तो उन पर जो है वो गुमराह करता है शैतान, तो अब उनको गुमराह करता है कि जो अल्लाह को यानी ईमान नहीं रखते। ईमान में क्या है? ईमान में कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ ईमान में है तौहीद, नबूवत, इमामत, आदल के साथ साथ नबूवत और इमामत और माआत क़यामत। इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम के मुतालिक चंद जुमले पेश कर दूँ कि इमाम का जो है वो आज रोज़ विलादत है, 15 शाबान, आमद इमाम हसन मुश्तबा 3 हिजरी में पहली ज़िलहिज को इमाम अमीर उलमोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब फातिमा ज़हरा से शादी हुई, अक़्द अमीर उलमोमिनीन हुआ जनाब सईदा से, और फिर जो है वो 15 माह रमज़ान को इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद है। हज़रत उम्मे फ़ज़ल चची हैं रसूल खुदा की, हज़रत अब्बास की ज़ौजा हैं, चचा है रसूल खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, हज़रत अब्बास फरमाती हैं मैंने ख्वाब देखा रसूल खुदा से कहा, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा कि आपका एक जिस्म का टुकड़ा, आपका एक नूर का टुकड़ा मेरे गोद में आ गया। मैं बहुत परेशान हूँ, ये क्या मैंने ख्वाब देखा? तो आप मुस्कुराए, कहा कि परेशानी की बात नहीं, मेरे यहां एक नवासा पैदा होगा और आप उसको पालने में मदद करेंगी। जब 15 माह रमजान को रसूल खुदा तशरीफ लाया, कहा या अली मेरे नवासे को मेरे पास ले आइए। तो जनाब सईद और जनाब अमीर लेके आए और रसूल खुदा ने आगोश में लिया, प्यार किया और कहा कि या अली आपने नाम क्या रखा? कहा या रसूल खुदा मैं आप पे कभी सबकत हासिल नहीं करता, तो जो आप नाम रखें। कहा मैं भी अल्लाह पे सबकत हासिल नहीं करूंगा जो अल्लाह नाम रखे मेरे नवासे का। तो फौरन जनाब जिब्राइल नाजिल हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है अली को आपसे वही नस्बत है जो हारून को मूसा से थी, और हारून के दो बेटे थे शब्बर और शब्बीर, जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं, लेकिन शब्बर या शुब्बर भी लिखा, शुब्बर और शुबैर, शब्बर और शुबैर। तो कहा कि इनके नाम जो है वो उन पे उनके साथ रखें। कहा ठीक है, मूसा की ज़बान इब्रानी थी परवरदिगारा, मेरी ज़बान अरबी है, मैं अरबी में नाम रखूँगा। तो खालिक ने कहा हाँ, तो आपने नाम रखे हसन व हुसैन, यानी हुसन से, यानी दोनों खूबसूरत, हसन खूबसूरत और हुसैन यानी भाई, जब दो भाई हों तो बड़े भाई छोटे भाई, दोनों खूबसूरत, बे इंतहा खूबसूरत। रसूल इस्लाम भी खूबसूरत थे, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, इमाम हसन मुश्तबा इतने खूबसूरत थे कि जब आप बाहर निकलते तो बाजार रुक जाता था, लोग देखने के लिए रुक जाते। मदीने के अगर आप बाजार में जाएं कभी कुछ खरीदारी के लिए घर से बाहर निकले तो लोग देखने के लिए रुक जाया करते थे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को। इमाम हसन मुश्तबा बे इंतहा खूबसूरत, बे इंतहा शुजा, सखावत, आपका करम मशहूर है, अहले बैत करीम है, करीम मैंने पहले भी शायद अर्ज किया था। करीम उसे कहते हैं कि सखी जो सखावत करे, जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, करीम वो जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए। अल्लाह के नाम से अल्लाह करीम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ला जलालहु करीम, नबी करीम, और अहले बैत भी करीम है, और करीम अहले बैत, अहले बैत में सबसे ज्यादा करीम इमाम हसन है मुश्तबा, हर एक की अपनी अपनी सफात। हत्ता जो है वो शबलंजी जो अहले सुन्नत के मौर्रख हैं, उन्होंने अपनी बसायरुद्दराजात में कहा है कि इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों हज पे जा रहे थे, साथ में आपके अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार थे, आपके बहनोई। इमाम हसन मुश्तबा ने 25 हज बेनबर रिवायत अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में 25 हज पाप अदा किए, कमो बेश इनकी रिवायत के मुताबिक 25 हज, कुछ ने कमो ज्यादा लिखे, 25 हज किए पाप अदा। और मशहूर मारूफ फिर आपने हदीस के जब इसने सवाल किया कि मौला जब सवारी मौजूद है, घोड़ा है आपके, यानी मौला की अपनी तिजारत थी, अपना ज़रात थी बहुत ज़्यादा, तो आप फिर पैदल क्यों जा रहे हैं? का अफ़दलुल आमाल अहमज़ुहा, अल्लाह को सबसे ज़्यादा आमाल वो पसंद है, वो सबसे ज़्यादा अफ़दल आमाल करार देता है जिनमें ज़हमत ज़्यादा होती। दूर से कोई ड्राइव करके आ रहा है मजलिस के लिए, नमाज के लिए, कोई आदमी ज़हमतें करके जा रहा है, उसका सवाब ज्यादा है, जितनी जहमत ज्यादा उतना सवाब अजर बहुत ज्यादा। तो हज पे गए आप, तो उस हज के सफर में, अब हज के सफर लिखा है मेरे हिसाब से ये जाहिरन वापस आ रहे हैं हज से, तो आपका जो है वो लोगों को आपने खिला पिला दी जो कुछ था, तो आपके पैसे राह से खत्म हो गए और आपने सब कुछ लोगों को बख्श दिया, खाने पीने की चीजें। अब तीनों साथ थे, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर अलैहिस्सलाम। तो जब खाने पीने को नहीं था, प्यास लगी, उनका भी कुछ खाने को नहीं है, मौला हसन ने कहा ठीक है रुके, एक जगह रुके, एक झोंपड़ी थी, गए करीब में, कहा कोई है? तो एक खातून निकली बाहर, जी कुछ खाने को है? कहा ये एक बकरी है मेरी, इसका दूध, ये शबलंजी अहले सुन्नत की मौर्रख कहते इसका दूध दुहा लें। तो मौला ने दूध दुहा उसका और पेश किया सबको, मुख्तसर तो दूध, भूख रफा नहीं हुई, तो कहा कि भाई ये आपको फिर भी भूख, कहा तो कहा इसी को ज़िबह कर ले। मौला कहा नहीं तुम्हारी यही है। कहा नहीं आप इसको ज़िबह, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। तो उसको ज़िबह किया, उसको दिया, उसने पका के दिया, खाया, चले गए। कहा देखो मौला हसन अलैहिस्सलाम ने जूद व सखावत, मौला के करम, कहा अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो हम मदीने के रहने वाले हैं, मदीने आ जाना, करीब में मदीना। उसका शाम को शोहर आया, उसने कभी क्या बकरी कहाँ गई? कहेंगे इस तरह से मेहमान आए थे, वो मेहमानों को मैंने खाना खिला दिया। कहा भाई वो कौन थे? का नाम तो मैंने नहीं पूछा, मदीने के रहने वाले। का मदीने में इतने लोग हैं, हम कहाँ तलाश करेंगे? कहने उन्होंने कहा था आ जाना, ठीक है। चंद दिन गुजरे, उन्होंने कहा भाई चलो हम चलते हैं, भाई घर में खाने पीने को नहीं, आए मदीने तो लोगों से मांगने लगे। इमाम हसन मुश्तबा ने देख लिया, फौरन आए। उस खातून से कहा याद है एक मरतबा हम आपके मेहमान बने थे? कहा हाँ। कहा आओ मेरे मेहमान। मौलाना ने खाना खिलाया, सब कुछ दिया और 1000 बकरियां उन्हें तोहफे में दी। कहा वो जो तुमने एक बकरी दी थी उसके एवज मेरी तरफ से 1000 बकरियां। मौलाना की अपनी ज़रात थी, बागात थे, बेनतहा मुलाजमीन रखे, उसको जमीन को आबाद किया, बागात लगाए अपने। तो 1000 बकरियां उसे अता की। उसने कहा नहीं, एक हमने बकरी दी थी। मौला ने कहा ये मेरी तरफ से 1000। शुक्र अदा करके जाने लगे, शुक्रिया मौला। कहा नहीं, मेरे भाई हुसैन के पास भी जाओ, वो भी अता करेंगे। वो दोनों में भी उठे, कहा अभी आपके भाई ने भेजा इमाम हुसैन साहब से। कहा मौला ने कहा 1000 बकरियां मेरी तरफ से। फिर कहा कि अब्दुल्ला ने जाफर तैयार के पास भी जाओ। उनके पास गए तो कहा कि भाई हमें जरूरत नहीं। कहा कि नहीं, तो उन्होंने भी कई सौ बकरियां दी, या ज़ाहिर 1000 ही दी या कई सौ। करम इमाम हसन मुश्तबा इतना वसी है, शायद सवाल मरबूत हो कोई, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का जो मकाम और उनकी अजमत बे इंतहा ज्यादा। इमाम अलैहिस्सलाम के सारी दुनिया में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत मशहूर है, बे इंतहा शुजा, दलेर, शेर खुदा के शेर थे, असदुल्लाह के असद। और तमाम जवानाने बनी हाशिम जनाब अब्बास के शागिर्द थे, तमाम रज्म के जो आलात थे, जंग के आलात, वो जनाब अब्बास को, चाहे गुर्ज हो, तलवार हो, नेजा हो, तीरंदाजी, कुछ भी सब चलाना आता था। तो तमाम जवानाने बनी हाशिम जनाब अकबर अलैहिस्सलाम सब के सब जनाब अब्बास के शागिर्द, सिवाय सज्जाद के तमाम जवानाने बनी हाशिम, जनाब कासिम और जनाब अब्दुल्ला, जनाब वक्र, जनाब आपके अपने छोटे भाई और जनाब औन मोहम्मद, सब आपके शागिर्द जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के। और जनाब अब्बास इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के शागिर्द, उनसे जंग सीखी थी। और बे इंतहा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम दलेर। जंग सिफीन में तनहा पूरे लश्कर मुआविया ने जब कब्जा कर लिया पानी पे और कहा अली का पानी बंद कर दो अली की फौज का, तो अमीर उमैन अलैहिस्सलाम के सामने मौला हसन बैठे थे। जब किसी ने आके कहा मौला मुआविया ने पानी बंद कर दिया, तो इमाम हसन ने कहा बाबा मुझे इजाजत दें, क्योंकि मौला जो है उन्हें लड़ने नहीं देखा। ये रसूल खुदा, अल्लाह ने कहा रसूल नद अबना नव अबना कुम, तुम अपने बेटे लाओ हम अपने बेटे लाएंगे। तो अल्लाह ने हसन हुसैन को रसूल खुदा का बेटा कहा, रसूल खुदा ने कहा मेरे बेटे, तो मैं रसूल खुदा के बेटों को हुक्म नहीं देता। तो कहा कि नहीं बाबा मुझे इजाजत दें, मैं आज पानी छुड़वाऊंगा। कहा ठीक है। मौला इमाम हसन मुश्तबा आए और आने के बाद पूरे लश्कर से ऐसी जंग की कि पूरी फौज को पीछे हटाया और पानी छुड़वा लिया, और पूरी फौज से का पानी पियो। तो आपके लोगों ने कहा मौला अगर आप कहें तो हम इनका पानी बंद कर दें। मौला ने कहा नहीं पीने दो। कहा लेकिन मौला इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया था, तो मैं अपने अंदाज से कहूंगा कि मौला कहेंगे कि भाई वो उनका किरदार था, ये हमारा किरदार है। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शजाअत, आपका इल्म, सखावत, शहामत, अजमत, खूबसूरती, तमाम चीजों में आप हसन हैं, तमाम चीजों में खूबसूरत हैं। इल्म से मुताल्लिक कि जब पहले खलीफा से किसी ने सवाल किया कि मैं हज पे गया था और मैंने शुतुरमुर्ग के जो हैं वो अंडे जो है कुछ तोड़ दिए, कुछ खाए कुछ नहीं, इस तरह से, तो मेरा इस पे कफारा क्या है? उन्होंने कहा भाई अबू बैदा इब्ने जर्राह से पूछ लो, उनसे पूछा। उन्होंने कहा अली इब्ने अबी तालिब से पूछो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आया वो आदमी, कहा मौला इस तरह से या अली मेरा कफारा क्या है, मैंने इस तरह से शुतुरमुर्ग के ऊँटों को, शुतुरमुर्ग के अंडों को तोड़ा। तो आपने कहा वो सामने दो बच्चे खड़े देख रहे हो, इमाम हसन हुसैन खड़े थे 9 बरस और 8 बरस के, कहा इनमें से किसी से भी पूछ लो। तो आए उसने कहा ये बड़े हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई इस तरह से मैंने हज पे, अब कफारा क्या है, अंडे तोड़े हैं शुतुरमुर्ग के। तो आपने फरमाया कि ऊँटनियाँ लो, उन्हें हमला करवाओ और उनके जो बच्चे होंगे वो कफारे के तौर पे दे दो हाजियों को, जो गरीब हो उनको खिला दो। तो मौला अमीन उमैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा कि बेटा मसले का जवाब आपने सही दिया, लेकिन कुछ ऊँटनियों का हमल जो है वो गिर जाता है, कुछ हमल खराब हो जाते हैं। तो कहा बाबा सारे अंडे भी तो ऐसे नहीं होते कि जिनसे चूजे निकलें या उसमें से बच्चे निकलें, कुछ अंडे भी तो खराब हो जाते हैं। मौला ने कहा बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि ये मेरे लाल का इल्म, मेरे लख्ते जिगर हसन मुश्तबा साहब, बड़े अलकाब से मौला ने उनको पुकारा कि लोगों पे वाजे हो मेरे कैसे हैं मेरे बेटे। मैं चंद जलीली सवालों के जवाब दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। क्या कर्जदार शख्स पर खुम्स वाजिब है, और जो हम कफन खरीद कर रखते हैं इस पर भी खुम्स वाजिब है? आका हुसैन आपको सलामत रखे हैं। आका हुसैन बार परवरदिकार आप लोगों को सबको सलामत रखे, मौला आप का साया आपके सर पर कायम दायम रहे। बात यह है कि कर्जदार पे अगर हम आजकल के बहुत से लोन्स होते हैं प्राइवेट, वो अगर आप कर्जा उतार दें जो खुम्स के आपके जो बचे हैं ना, बचत जिस पे आमदन पे खुम्स नहीं है, बचत पे है, वो बचत आप उतार दें तो फिर नहीं है, नहीं तो है। इल्ला ये कि आगा सिस्तानी ने भी फतवा दिया है कि नहीं, जो जिनके मकानों के कर्जे हैं उन पे नहीं है। कफन जो आपने खरीद कर रखा हुआ कई साल से पड़ा हुआ है तो उस पे खुम्स निकाल दें, एहतियातन अच्छी बात है, निकाल देना चाहिए उस पे खुम्स, बेहतर यही है। भाई जिंदगी में किसी भी शय पे एक दफा खुम्स होता है। जामिन हसनैन साहब ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, माई ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम फिजियो ट्रिटिक डिसऑर्डर, कैन यू प्लीज रिकमेंड एनी वजीफा फॉर हिज मेंटल हेल्थ? आपके भाई को जो है अगर हो सके तो उनसे कहें या हयो या कयूमो 174 दफा, 174 टाइम्स या हयो या कयूमो, अल्लाह के ये दो नाम है ये पढ़ाएं। वो इंशाल्लाह ज्यादा पढ़ा करें खुद, और अगर नहीं कर सकते तो कोई उनके लिए पढ़ के 70 दफा पानी पे दम कर दे, 70 दफा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दे, वुजू के साथ क़िबला रुख बैठ के 70 दफा 70 टाइम्स सूरह फातिहा, ब्लो इट ऑन वाटर, और वही पानी खत्म नहीं होने दें उसमें और मिक्स करते रहें, वही उन्हें पानी पिलाएं। एफएम अली का सवाल है, सलाम आगा, वालेकुम सलाम। आलम बरजख क्या है, क्या ये दूसरी दुनिया है? क्या आलम बरजख में 14 मासूमीन हमारी मदद करेंगे? आलम बरजख में कौन से आमाल काम आएंगे? देखिए आलम बरजख जो है बैनहुमा बरजखों, ये दूसरी जगह पे है कि मैं वरा ही बरजखून, उसके ये दुनिया के बाद जो है बरजख शुरू हो जाती है, कयामत तक बरजख का की मुद्दत है वो। हम वहाँ पे रूह की शक्ल में हैं, और वहाँ पे जो चीज़ें काम आती हैं वो ईमान काम आता है, अमल सालेह काम आता है, सदका ज़्यादा निकालना, गीबत ना करना, तहारत से रहना, और मासूमीन अलैहिस्सलाम के अल्लाह मरजुकनी शफात अल हुसैन यौमल वरूद वरूद कब्र, ये ज्यारत आशूरा में जुमला, ये पूरी ज्यारत ना भी पढ़ सकें ये जुमला दोहराए, आइम्मा की शफात क्यों नहीं, बहुत सौ की बरज़ख़ में भी शफात होगी और करेंगे आइम्मा अलैहिस्सलाम शफात। और हुब्बे व हुब्ब अहले बैत, मेरी और मेरी आल की मोहब्बत सात सबात मवाद है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सात मवाकों पे मेरी और मेरी आल की मोहब्बत काम आएगी? वह अहवाल हन्ना हजीम अजीमा, उनका हौल अहवाल हन्ना अजीमा, बहुत हौल ज्यादा होगा उनका उन सातों मकाम पे, मेरी मौत के वक्त कब्र में, नुशूर के वक्त सिरात पे, मीजान में, तो सब मकामात पे, सातों मकामात पे मेरी और मेरी सवाल मुनकर नकीर के वक्त सब जगह पे मेरी और मेरी आल की मोहब्बत काम आएगी। तो बहुत ज्यादा हदीस है, एक आदि नहीं है, क्यों नहीं बरसख में काम आएगी? आयम मदद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सैयद हैदर बुखारी साहब ने सवाल किया है, इज इट पॉसिबल टू स्वेयर इफ वन डज नॉट बिलीव इन आवर ट्रूथ फॉर विच देर इज नो विटनेस अदर देन अल्लाह? क्या इंसान कसम खा सकता है, यानी अगर कोई आदमी उसकी बात को ना मान रहा हो, कसम खा सकते हैं? कसम जो है वो अगर जरूरत पड़े तो खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन कसम वैसे आम तौर से खाना मकरूह है, लेकिन जरूरत हो तो खा सकते हैं, कसम खाना जायज है। सबा राजशी का सवाल, सलाम मौलाना, वालेकुम सलाम। स्टे ब्लेस, डे बिफोर यस्टरडे यू टॉक्ट अबाउट जन्नत, आई वॉन्टेड टू आस्क इफ देर आर डिफरेंट जन्नत स्टेजेस इन जन्नत, आर डिफरेंट पीपल गोइंग टू बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जन्नत? आपने, मैंने परसों जो है जन्नत से मुताल्लिक बात किया तो उससे मुताल्लिक ने सवाल किया कि आया सब जन्नत में एक ही जैसे होंगे, जन्नत के भी मकाम आते हैं? नहीं, जन्नत में भी जहन्नम के लहा यानी जन्नत के सात दरवाजे, और जहन्नम के सात दरवाजे जन्नत के आठ, अल्लाह ने एक दरवाजा ज्यादा रखा ताकि ये कि रहमत ज्यादा है अल्लाह की, और फिर वो सारे के सारे अल्लाह ने जन्नत में भी मकामात रखे हैं, और जन्नत सारी बराबर नहीं है, जिस जगह पे आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम होंगे वो कुछ और है, वह वहीं और अंबिया होंगे जहां पे, जहां شهداء صالحين صديقين يعني متقين، درجات ہیں مومنین، تو آخری درجات تک ہیں یعنی بالکل نچلا طبقہ، اور سب سے جو مرکز ہوگا جو سینٹر اس کا جنت فردوس، جنت کے درجات ہیں. اقرا فردوس نے سوال کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، پروردگار آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین. شکریہ بہت بہت. مولانا صاحب، ایک عورت کا نماز کالے رنگ کے لباس میں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، کالا لباس ہم نے کہا تھا کہ کالا لباس پہننا مکروہ ہے سوائے چار چیزوں کے. کالا امامہ مکروہ نہیں ہے کبھی بھی، کالی ابا، چاہے وہ عورت پہنے چادر یا مرد پہنے کالے رنگ کی ابا، اور کالا جو ہے وہ رومال اور کالے موزے، یہ مکروہ نہیں ہے. اس کے علاوہ مکروہ ہے، مکروہ سے مراد یہ کہ خوشی کے دنوں میں نہیں پہننے چاہیے، عام دنوں میں نہیں کالا لباس پہننا چاہیے. کالے جوتے بھی مکروہ، کالا لباس بھی مکروہ ہے. غم کی علامت ہے صرف سوگ کے دنوں میں پہننا، اس کا ثواب ہے کہ غم اہل بیت علیہ السلام کے غم میں پہنے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کالے لباس کو نہ پہنا جائے، اس میں کالے لباس کے اندر نماز بھی مکروہ ہے، سفید لباس مستحب ہے. فرا سید، السلام علیکم. وعلیکم السلام آغا جی، ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ. مائی کوشچن از ہاؤ ٹو پرفارم قضا نماز آف پیرنٹس. جو قضا نمازیں ہیں والدین کی، وہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے جیسے قضا اپنی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ان کی قضا نمازیں جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں مستحب اعمال سارے چھوڑ دیں، صرف واجبات پہ اکتفا کر لیں تاکہ جلدی جلدی ہو جائیں. واجبات جو ہے نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل بے رکوع، رکوع، سجود، یہ پانچ رکن ہیں، اور چھ غیر رکن ہیں. اس میں ہے قراءت، یہ جو پہلی اور دوسری رکعت کے اندر فاتحہ، دوسری سورہ، اور تیسری چوتھی رکعت کے اندر تسبیحات اربع ایک دفعہ یا فاتحہ پڑھ لیں، اور یہ ہے قراءت. اور پھر اس کے علاوہ ذکر، جو رکوع سجود کے اندر بھی پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمد رکوع میں ایک دفعہ، اور سجدے میں ایک دفعہ سبحان ربی العلیٰ و بحمد، یا سبحان اللہ 3 times، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ذکر ہے. اسی طرح سے تشہد ہے، دوسری اور آخری رکعت میں تشہد، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک سلام واجب ہے. تین سلام جو ہے پہلے دو مستحب ہیں. پھر ترتیب اور موالات، ترتیب یعنی سیکوینس، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا، اور موالات پے در پے، یعنی یہ نہیں ہو کہ کچھ سوچ رہے ہیں، لمبا چوڑا سوچ لیا، پھر کے بعد ہاں کیا پڑھ رہا تھا نماز جا رہے، نہیں، ایسا نہیں، کوئی گیپ نہیں آیا. نماز جو ہے وہ ترتیب اور موالات کے ساتھ پڑھیں. ایسے ہی والدین کی نماز قضا بھی پڑھیں گے. شفق زہرا نے سوال کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر توبہ کریں اور ہمارا گناہ بہت بڑا ہو تو پلیز کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم توبہ کر سکیں. وہ یہ کہ اس دعا جو اللہ کو پسند ہے اور اہل بیت نے بتائی ہو، پلیز آنسر. دیکھیں، توبہ کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو، کبھی بھی یہ نہیں سوچے توبہ، دو رکعت نمازیں توبہ پڑھ لیں. نماز جعفر تیار بہترین نماز گناہوں کی بخشش کے لیے، تو نماز جعفر تیار دیکھیں تو فتح العوام میں ہے، مفات الجنان میں ہے، بے انتہا مصحف نمازوں میں. نماز شب تب پابندی سے پڑھیں، سب سے اچھا کفارہ گناہوں کا استغفار، صلوات کثرت سے پڑھیں. جمعے کے دن صبح میں 100 صلوات کم از کم پڑھیں، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، گناہان کبیرہ صغیرہ سب کا کفارہ صلوات ہے، تو صلوات پڑھیں، زیادہ صلوات پڑھیں. جس کو کہتے ہیں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں نہیں بخشے جا سکتے، تو اس کو کثرت سے صلوات پڑھو. صلوات تمام اعمال جو کرتے ہیں نا، اعمال نیکیاں کرتے ہیں، تو کچھ اعمال ہیں جس کی نیکی لکھی جاتی ہے، کچھ میں گناہ صاف ہوتے ہیں جیسے استغفار، استغفر اللہ تعالیٰ، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صلوات میں دونوں کام ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی محو ہوتے ہیں. ایک ہی صلوات ایسا اثر ہے کہ جس میں دونوں کام پائے جاتے ہیں، تو صلوات کثرت سے پڑھیں. لیلا رضوی، ابھی ہم آخری دو سوال لیں گے، اور سوال نہیں بھیجیں. السلام علیکم. علام صاحب، وعلیکم السلام. پلیز گیو می اے وظیفہ فار گڈ میرج آف مائی ڈاٹر. دیکھیں، کسی مرجع سے میں نے سنا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد والد یا والدہ بچی یا بیٹی بیٹی کی شادی کے لیے، یا اپنی شادی کے لیے بھی کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے چاہے تو، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 100 دفعہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. 100 دفعہ قبلہ رو بیٹھ کے آرام سے 100 دفعہ 40 days 40 دن مسلسل پڑھیں. رات کو پڑھیں، سونے سے پہلے کبھی بھی پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی اتوب الیہ 100 دفعہ، ان شاء اللہ تعالیٰ بچے بچی کا رشتہ ہوگا اور اچھی جگہ ہوگا. نیت کر کے پڑھیں گے اچھی جگہ ہو جائے، یا آپ جیسی نیت ہوگی ویسی آپ دعا مانگے. ہینا فاطمہ، وٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو ریسائٹ قرآن ان رمضان؟ سب سے اچھا وقت جو ہے وہ فجر کے بعد ہے، سحری کے وقت، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی پڑھ لیں، مغرب سے پہلے پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں، कभी भी कुरान का जो है वो टाइम अच्छा है, नमाजों के साथ जो है पहले या बाद में अच्छा टाइम है, जोहर के साथ, असर के साथ, किसी भी नमाज के साथ। आखिरी सवाल, सुल्तान आवान, आई लव समवन एंड शी डस टू बट आवर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, सो प्लीज टेल मी एनी दुआ सोल्यूशन एंड सजेशन। ये जो मैंने भी बताई है बेटा वही आप पढ़ें कि भाई अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी से तो यही आप जो है अमाल पढ़ें जो मैंने अभी अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह बताई है। इंशाल्लाह ताला वालदैन भी राज़ी होंगे, और अगर हो सके तो फजर के बाद या सुबह में दुआ तवस्सुल पढ़ लें। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आज इमाम हसन सलाम के मीलाद के सदक़े में, उनके जश्न के सदक़े में हमें ईद इनायत फरमा, बारहवें सलाम के ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नेस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार हमें ज़िंदगी में बार बार मौला हसन की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफात नसीब फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगार कोरोना वायरस का खात्मा फरमा, तमाम मोमिनीन मोमिना जो मरीज हैं किसी भी बीमारी के अंदर उन सबको शफाए कामला अजला इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मकरूजों के कर्ज़े अदा फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, हमारे बच्चे बच्चियों के नसीब अच्छे फरमा, सबके रिज़्क़ रोज़गार में सेहत के सलामती के साथ सबके रिज़्क़ के साथ लंबी जिंदगी सबको इनायत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंत समीउल अलीम। परवरदिगार हमारे महरूमीन के दराजात बुलंद फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंत समीउल अलीम बिहक़्क़ल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वआला मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।